एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम अमेरिकी उपन्यास पर, डॉन डिलिलो का व्हाइट नॉइज।
हाँ बिल्कुल, 1985 में आया था ये और आते ही इसने नेशनल बुक अवार्ड भी जीता, काफी चर्चित रहा।
डॉन डिलिलो वो जाने जाते हैं अपनी खास शैली के लिए, मतलब जिस तरह से वो आज की अमेरिकी जिंदगी की वो अजीब सी बेचैनियों और डर को पकड़ते हैं।
सही कहा, प्रौद्योगिकी, मीडिया, बाजारवाद और इन सब के बीच इंसान के अस्तित्व से जुड़े गहरे सवाल वो उठाते हैं।
उनकी भाषा में भी एक खास बात है ना, तीखे संवाद भी हैं और माहौल को रचने वाले बारीक ब्यौरे भी।
और वो व्हाइट नॉइज वाली बात, दुनिया का सफेद शोर, मतलब जानकारी, विज्ञापन, टेक्नोलॉजी का वो लगातार बहता शोर जो कहीं ना कहीं हमारे सोचने समझने के तरीके को बदल रहा है, ये उनके लेखन का एक अहम हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल, तो व्हाइट नॉइज हमें ले जाता है ग्लैडनी परिवार की दुनिया में। जैक ग्लैडनी जो प्रोफेसर हैं,
हाँ, एक छोटे से कॉलेज में, और पढ़ाते क्या है? हिटलर स्टडीज।
और मजे की बात यह कि ये विभाग उन्होंने खुद ही शुरू किया है।
बिल्कुल, उनकी पत्नी है बैबिट और उनके साथ हैं 4 बच्चे। ये बच्चे उनकी मतलब पिछली शादियों से हैं।
तो ऊपर से देखने पर तो ये एक आम अमेरिकी परिवार लगता है, वही सब, स्कूल छोड़ना, घर का सामान खरीदना,
साथ में टीवी देखना, लेकिन इस आम सी सतह के नीचे बहुत कुछ उबल रहा होता है।
कहानी में मोड़ कहाँ आता है?
कहानी का असली मोड़ तब आता है जब जैक को पता चलता है कि बैबिट वो चुपके से डायलर नाम की एक दवा ले रही हैं।
डायलर, ये क्या है?
ये एक एक्सपेरिमेंटल दवा है, कहते हैं कि वो मौत के डर को खत्म कर देती है।
ओहो, तो जाहिर है इस राज के खुलने से जैक की दुनिया हिल गई होगी।
बिल्कुल, उसे न सिर्फ पत्नी के धोखे का सामना करना पड़ता है बल्कि खुद अपने अंदर मौत का जो डर दबा पड़ा था वो भी जैसे सतह पर आ जाता है।
और फिर ये डर उनके आरामदायक जीवन के हर कोने में रिसने लगता होगा।
हाँ वही होता है।
तो उपन्यास एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना बनावटी है, मीडिया से छन कर आता है, बाजार के इतने भटकाव हैं, क्या यहाँ सचमुच मतलब प्रामाणिक रूप से जीना मुमकिन है?
सही, और ग्लैडनी परिवार इसी माहौल में जीता है। लगातार चीजें खरीदना, मीडिया की बम्बारी, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता।
जैक का पढ़ाने का विषय भी कुछ अजीब सा है, हिटलर स्टडीज। बैबिट बुजुर्गों को एरोबिक्स सिखाती हैं।
हाँ, शायद उम्र के ढलने के एहसास से जूझते हुए, और उनके बच्चे वो तो आजकल के संस्कृति को शायद अपने माँ बाप से भी बेहतर समझते हैं।
हाँ लगता तो है।
ये परिवार मतलब प्यार तो है उनमें, पर कहीं ना कहीं हर कोई अपनी दुनिया में है, अपने डरों में कैद है। वो जो आधुनिक जीवन का लगातार शोर है ना, वो उन्हें एक दूसरे से भी काट देता है।
और यही डिलिलो की खूबी है शायद, वो रोजमर्रा की चीजों में जैसे सुपरमार्केट जाने या टीवी देखने में जिंदगी के बड़े गहरे मतलब ढूंढ निकालते हैं।
बिल्कुल, कमाल की बात है ये।
किरदारों पर थोड़ी और बात करें। जैक ग्लैडनी जो कहानी सुना रहे हैं, प्रोफेसर हैं, हिटलर स्टडीज के मुखिया भी,
पर विडंबना देखिए, जर्मन भाषा नहीं जानते।
हाँ, ये बात उनके अपने अंदर के संघर्ष को दिखाती है ना, एक प्रामाणिकता की तलाश, एक काबिलियत साबित करने की कोशिश। क्या ये उनकी पहचान का एक तरह का दिखावा है?
हो सकता है, जैक की पूरी यात्रा इसी के इर्द गिर्द घूमती है, अपनी मौत के एहसास का बढ़ना और इस अनिश्चित दुनिया में किसी तरह का अर्थ, कोई सुरक्षा ढूंढने की छटपटाहट।
वो एक आरामदायक अकादमिक दुनिया से निकलकर पहले अपनी शादी के संकट और फिर अपने सबसे गहरे डर से टकराते हैं।
हाँ, मौत का डर तो जैसे उनकी नस नस में समाया है, पत्नी की मौत का ख्याल, अपनी सेहत को लेकर वहम।
वो एक तरह से आज के उस इंसान का प्रतीक है जो दुनिया पर अपना कंट्रोल और मकसद बनाए रखना चाहता है,
पर दुनिया हाथ से फिसलती जा रही है।
बिल्कुल।
और बैबिट शुरू में तो वो ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुलझी हुई सी लगती हैं जैक के मुकाबले।
हाँ लगती तो हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अपने डर सामने आते हैं। ये डायलर लेना सिर्फ धोखा नहीं है, ये उनके रिश्ते की बुनियाद पर ही सवाल उठाता है।
सही कहा, मौत का डर इतना गहरा कि उसके लिए वो दवा पर निर्भर हो गई।
हाँ, और उनका काम भी देखिए, बुजुर्गों को एरोबिक्स सिखाना, वो रोजाना उम्र ढलने और शरीर के कमजोर होने का सामना करती हैं, इससे उनका अपना मौत का डर शायद और बढ़ जाता है।
और डायलर के लिए वो विली मिंक नाम के एक शख्स के साथ एक समझौता करती हैं।
हाँ, जिसे मिस्टर ग्रे भी कहा गया है। ये उनकी हताशा दिखाता है कि मानसिक शांति के वादे के लिए वो किस हद तक जा सकती हैं।
और दवा का असर, आपने कहा था कुछ? हाँ, दवा का असर देखिए, उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, वो शब्द भूलने लगती हैं।
सच में?
हाँ, मानो जिस दुनिया से वो जुड़ना चाहती थी उसी से कटती जा रही हों।
बड़ा अजीब है। अच्छा, एक और अहम किरदार है मरे जेसिस्किंड, जैक का दोस्त और सहकर्मी।
हाँ, मरे वो जैसे उपन्यास का दार्शनिक कमेंटेटर है, पहले स्पोर्ट्स राइटर था, अब प्रोफेसर बन गया।
वो सुपरमार्केट, टीवी शो, कार एक्सीडेंट जैसी आम चीजों में भी गहरे मतलब निकालता रहता है।
बिल्कुल, वो मौत और आज की जिंदगी के कनेक्शन पर जो थ्योरी देता है वो कहानी को एक ढांचा सा देती है और जैक पर उसका असर बढ़ता जाता है।
यहाँ तक कि वो जैक को हिंसा के बारे में सोचने के लिए भी उकसाता है।
हाँ, कुछ हद तक।
और बच्चे हेनरिक, डेनिस, स्टेफी, वाइल्डर,
वो सब मिलकर आज के बचपन और किशोरावस्था की एक तस्वीर पेश करते हैं, एक ऐसी पीढ़ी जो मीडिया के शोर में ही पली बड़ी है।
हेनरिक, जैक का बेटा, काफी तेज है पर शक्की भी है।
हाँ, वो अक्सर अपने पिता के विचारों को चुनौती देता है। बाबिट की बेटी डेनिस ज्यादा जिम्मेदार लगती है, माँ की सेहत की फिक्र करती है, वही डायलर की गोलियां ढूंढती है।
और छोटे बच्चे स्टीफी और वाइल्डर,
स्टेफी तो जैसे आम उपभोक्ता संस्कृति की बच्ची है, जबकि वाइल्डर ज्यादा रहस्यमयी है। उसका रोना जैसे बिना शब्दों के बहुत कुछ कहता है, और आखिर में उसका तिपहिया साइकिल चलाना एक अहम घटना बन जाता है।
और विली मिंक यानी मिस्टर ग्रे, कहानी में उसका क्या रोल है?
वो कहानी में ज्यादा देर नहीं रहता, पर उसका रोल अहम है। वो डायलर दवा बनाने वाला है जो बाबिट को दवा के बदले जिस्मानी ताल्लुक बनाने पर मजबूर करता है।
अच्छा।
तो वो दिखाता है कि कैसे विज्ञान और इंसानी रिश्ते दोनों का बाजारीकरण हो गया है।
हाँ बिल्कुल, सब कुछ खरीद फरोख्त की चीज बन गया है। बाद में जब जैक उससे मिलता है तो वो एक बहुत ही दयनीय हालत में मिलता है।
अच्छा, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? ये तीन हिस्सों में बटी है, आपने बताया था। हाँ, तीन हिस्सों में। पहला हिस्सा वेव्स एंड रेडिएशन, इसमें ग्लैडनी परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी दिखती है, और यहीं से उपन्यास के मुख्य विषय उभरने लगते हैं।
वो व्हाइट नॉइस का माहौल, टीवी, रेडियो, बाजार से आती आवाजों का शोर।
बिल्कुल, जैक की अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा, जैसे जर्मन सीखना, बैबिट के साथ मौत पर बातें कि पहले कौन मरेगा, मैरी की थ्योरीज, सब यहीं सामने आता है।
और सुपरमार्केट वाले दृश्य, वो तो कमाल के हैं।
हाँ, जैसे सुपरमार्केट आज का मंदिर बन गया हो, जहाँ परिवार चीजें खरीदकर सुकून और मतलब ढूंढता है।
जैक उसका वर्णन भी किसी धार्मिक जगह की तरह करता है, वो धीमी आवाज में बजता संगीत, रहस्यमयी चेकआउट स्कैनर,
पर साथ ही इतने सारे विकल्पों और सूचनाओं से वो बोझिल भी महसूस करते हैं। पर यही बैबिट की याददाश्त की गड़बड़ी और डेनिस का डायलर की शीशी ढूंढना कहानी में एक रहस्य और बेचैनी घोल देता है।
फिर आता है दूसरा हिस्सा, द एयरबोर्न टॉक्सिक इवेंट।
हाँ, और यहाँ कहानी का मोड एकदम बदल जाता है। शहर के पास एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और उससे न्यूडीन डी नाम का एक रहस्यमयी जहरीला बादल फैलता है,
एक आपदा।
हाँ, और ये एक मीडिया इवेंट बन जाता है। ग्लैडनी परिवार को घर छोड़कर जाना पड़ता है। अब तक जो डर मन में थे वो अब जान के खतरे के रूप में सामने आ जाते हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि वो इस घटना को सीधे महसूस करने के बजाय मीडिया रिपोर्टों के जरिए ज्यादा अनुभव करते हैं।
बिल्कुल, यही तो डिलिलो दिखा रहे हैं।
और यही जैक के साथ वो घटना होती है, वो बादल के संपर्क में आ जाता है।
हाँ, कार में गैस भरवाते हुए वो थोड़ी देर के लिए जहरीले बादल के संपर्क में आ जाता है। बाद में कैंप में एक टेक्नीशियन उसे बताता है कि अब उसके शरीर में उस केमिकल का डेटा प्रोफाइल बन गया है।
डेटा प्रोफाइल मतलब
उसकी मौत अब एक गिनी चुनी आंकड़ों में कैद सच्चाई बन गई है। ये उसके डर को एक नाम, एक ठोस शक्ल दे देता है।
बाप रे, इसके बाद घर वापसी होती तो है पर कुछ बदल चुका होता है।
हाँ, वो जहरीला बादल एक प्रतीक बन जाता है, अनदेखे खतरों का, अजीब दिखने वाले सूर्यास्तों का।
और तीसरा और आखिरी हिस्सा, डायलरामा।
डायलरामा, यहाँ कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैक डायलर की तहकीकात तेज करता है और आखिरकार बाबिट राज खोल देती है।
वो मान लेती है विली मिंक वाले रिश्ते के बारे में।
हाँ, वो मान लेती है कि मौत के डर से बचने के लिए उसने विली मिंक से रिश्ता बनाया और दवा ली, पर दवा ने काम नहीं किया।
तो जैक का मौत का डर अब जुनून बन जाता होगा।
बिल्कुल, और मरे की बातों से प्रभावित होकर कि हिंसा में जीवन देने की ताकत हो सकती है, वो विली मिंक को मारने का फैसला करता है।
लेकिन जब वो मिंक के मोटल रूम में पहुंचता है तो नजारा कुछ और ही होता है।
हाँ, वो किसी थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं होता। मिंक एक दयनीय नशे में धुत आदमी निकलता है जो टीवी विज्ञापनों के टूटे फूटे जुमले बोल रहा होता है।
जैक उसे गोली मारता है।
हाँ, पर यह बड़ा अजीब और बिढ़ंगा सा लगता है। फिर अचानक उस पे बया आती है और वो घायल मिंक को पास के एक अस्पताल ले जाता है।
और वो अस्पताल जर्मन बोलने वाली नन चलाती हैं।
हाँ, और वहां एक और विडंबना इंतजार कर रही होती है।
क्या?
एक नन जैक को बताती है कि वो सब नास्तिक हैं। भगवान और स्वर्ग में यकीन करने का ढोंग सिर्फ इसलिए करती है ताकि आम लोगों को तसल्ली मिलती रहे।
कमाल है। तो कहानी किसी साफ समाधान पर खत्म नहीं होती?
नहीं, कोई साफ समाधान नहीं। कहानी वापस रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आती है। छोटा बच्चा वाइल्डर चमत्कारिक ढंग से तिपहिया साइकिल चलाता है।
और आखिरी सीन फिर सुपरमार्केट का है।
हाँ, जहां ग्लाइडनी परिवार समेत सारे ग्राहक फिर से सजी गलियों में घूम रहे हैं। स्कैनरों की डिजिटल चमक में खोए हुए, बाजारवाद की रस्मों में एक अजीब सा सुकून पाते हुए, हमेशा उस शोर के बीच।
ये कहानी वाकई कई गहरे विषयों को छूती है। सबसे बड़ा तो मौत का डर ही है।
हाँ डिलेलो, इसे सिर्फ एक निजी डर की तरह नहीं दिखाते, बल्कि आज के समाज के एक बुनियादी हकीकत की तरह पेश करते हैं। हमारा कल्चर मौत को नकारता भी है और उसी के प्रति आसक्त भी रहता है।
और किरदार इससे बचने के लिए तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। अकादमिक ज्ञान, चीजें खरीदना, टेक्नोलॉजी, दवाएं,
पर कुछ भी काम नहीं आता। वो जहरीली हवा की घटना इसी दबे हुए डर का एक बाहरी रूप है।
दूसरा अहम विषय आपने बताया, बाजारवाद का एक नए धर्म की तरह उभरना।
बिल्कुल, सुपरमार्केट जैसे चर्च की जगह ले लेता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, सुकून पाते हैं। खरीदारी उन्हें एक व्यवस्था, चुनाव और चीजों की बहुताय का एहसास दिलाती है,
जो मौत की अनिश्चितता और खालीपन के ठीक उलट है।
सही, ब्रांड्स और विज्ञापन के नारे जैसे नई प्रार्थनाएं बन गई हैं, जो चीजों के जरिए अमरता का झूठा वादा करते हैं।
मीडिया का असर और असलियत की बदलती परिभाषा भी एक बड़ा मुद्दा है इसमें।
हाँ, डिलूलियो दिखाते हैं कि कैसे मीडिया हमारी जिंदगी में इतना घुस गया है कि असली घटना और उसकी रिपोर्टिंग के बीच का फर्क ही मिट गया है।
ग्लाइडनी परिवार जहरीली हवा की घटना को टीवी और रेडियो के बिना समझ ही नहीं पाता।
बिल्कुल,
जानकारी का ये लगातार शोर, ये वाइट नॉइज, हमारे असली अनुभव महसूस करने की क्षमता को ही जैसे सुन्न कर देता है, जिंदगी को नकल की एक कड़ी बना देता है।
और पहचान, परिवार के रिश्ते, वो कितने नाजुक दिखाए गए हैं।
हाँ, ग्लाइडनी परिवार आज के जमाने का परिवार है। अलग अलग रिश्तों से जड़े लोग, जो रोजमर्रा की आदतों और चिंताओं से बंधे हैं। जैक की अपनी पहचान भी जैसे एक नकाब है, हिटलर विद्वान का रोल।
जब सब कुछ सत्ता और नकल पर टिका हो तो अपनी पहचान और परिवार का ढांचा भी कमजोर पड़ जाता है।
सही बात है।
और टेक्नोलॉजी, वो आराम भी देती है और डर भी पैदा करती है। हाँ, वो जिंदगी को संभालने, भविष्य बताने और डर का इलाज करने का वादा करती है, जैसे डायलर। पर वही टेक्नोलॉजी नए डर भी पैदा करती है। जहरीला रिसाव, मेडिकल रिपोर्ट जो मौत को पक्का कर देती है, वो कंट्रोल का अपना वादा पूरा नहीं कर पाती।
आखिर में अकादमिक दुनिया पर भी एक विंध है इसमें।
हाँ, जैक की हिटलर स्टडीज की विशेषज्ञता दिखाती है कि कैसे अकादमिक ज्ञान असलियत से कट सकता है। ये आज के संस्थानों पर भी एक टिप्पणी है, जो अक्सर अपने असली मकसद से भटक जाते हैं।
डिलीलो के लिखने की शैली भी बहुत खास है। फर्स्ट पर्सन में कहानी है, जैक के नजरिए से।
हाँ, उसकी आवाज में एक बौद्धिक दूरी है, वहम है और एक रूखा सा मजाक भी। पाठक उसकी टूटी फूटी चेतना में जैसे डूब जाता है।
और उनका गद्य, बारीकियां पकड़ना, माहौल बनाना, डिटेल्स जमा करना,
तकनीकी भाषा और भावनाओं को मिलाना, वो शब्दों को दोहराकर उनमें फेरबदल करके एक संगीत जैसा असर पैदा करते हैं। संवाद भी अक्सर छोटे टूटे हुए होते हैं, जिनमें मीडिया की भाषा घुली होती है।
ये किरदारों के बीच की दूरी और शोर द्वारा उनके विचारों पर कब्जे को दिखाता है।
बिल्कुल,
कुछ बातें याद रह जाती हैं, जैसे मरे कहता है, सारी कहानियां मौत की तरफ ही बढ़ती हैं।
हाँ, ऑल प्लॉट्स टेंड टू मूव डेथवर्ड। ये शायद कहानी कहने की हमारी जरूरत और मौत के एहसास के बीच के रिश्ते की तरफ इशारा है।
और बैबिट का वो डर, क्या हो अगर मौत सिर्फ आवाज हो, बिजली की आवाज।
वॉट इफ डेथ इज नथिंग बट साउंड, इलेक्ट्रिकल साउंड।
ये मौत को शांति के बजाय उसी भारी व्हाइट नॉइस का जारी रहना मानता है। ये उपन्यास के शीर्षक पर सीधे मौत के डर से जोड़ता है।
और जैक का अपने बारे में सोचना, मैं वो झूठा किरदार हूँ जो नाम के पीछे पीछे चलता है।
आई एम द फॉल्स कैरेक्टर दैट फॉलोज द नेम अराउंड।
हाँ, ये उसकी अपनी पहचान को लेकर जो शक है उसे दिखाता है।
ये उपन्यास पढ़कर एक अजीब सा एहसास होता है, डर भी है, गहरा मजाक भी है, उदासी भी है।
हाँ, एक मिला जुला रूप है। ये उन आधुनिक बेचैनियों को सामने लाता है जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर शायद कह नहीं पाते। ये रोजमर्रा की चीजों, खासकर खरीदारी और मीडिया देखने को लेकर हमारी सोच बदल देता है।
ये दिखाता है कि कैसे हम चीजों की भीड़ में सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं।
हाँ, और समाज की आलोचना करते हुए भी ये किरदारों के लिए हमदर्दी बनाए रखता है।
इसमें कोई आसान जवाब नहीं मिलते, लेकिन परिवार के टिके रहने में एक उम्मीद की झलक जरूर दिखती है।
बिल्कुल, इसका असर देर तक रहता है। हम अपने आसपास के व्हाइट नॉइज के प्रति ज्यादा सजग हो जाते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो ये उपन्यास हमें दिखाता है कि मौत का डर और आधुनिक जीवन का शोर हमें कैसे गढ़ते हैं।
हाँ, और फिर भी इस बनावटी दुनिया के शोर के बीच इंसानी जुड़ाव और अर्थ की तलाश जिंदा रहती है,
भले ही वो कितनी नाजुक और अनिश्चित क्यों ना हो।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।